ओम शांति। भाग्यशाली हैं हम आत्माएं जिन्हें इतने महान तपस्वी बाबा के अनमोल रतन पालना के लिए मिल रहे हैं। आज भी बाबा ने महावाक्यों में मधुवन निवासियों की महिमा अपरमपार सुनाई और हम तो खुश नसीब हैं आज हमारे बीच आदरणीय शीलू दीदी जी, आप बहुत अनुभवी हैं मम्मा बाबा की पालना लिए हुए। युवा अवस्था से ही मैं समझती हूँ आप ज्ञान में हैं, जब आप कॉलेज कर रहे थे तभी स्कूल लाइफ से ही। हाँ देखो
10वीं 11वीं
में पढ़ते,
नहीं 10 साल के थे
तब से आप बाबा के बने हैं। और जहाँ तक मुझे याद आता है कि बाबा ने आपको एक बार कहा था तुम्हें ज्ञान की गंगा बनना है, यही था ना?
वो तो अव्यक्त बाबा ने कहा कौन सी गंगा हो,
ज्ञान।
तो मैंने कहा ज्ञान गंगा, बाबा ने कहा नहीं और आगे, और कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा बहती गंगा, कहा नहीं वो तो जो सेंटरों पर रहती वो बहती गंगा, आप कौन सी गंगा हो, तो फिर बाबा ने कहा हर की पौड़ी की गंगा हो, जहाँ सारा विश्व आके ज्ञान स्नान करता है।
मुझे भी ये बात आज अचानक हल्की से इम्प्रिंट में याद आई, कहाँ से याद आई वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये हल्की हल्की बात याद थी आपके बारे में कि ऐसा बाबा ने कहा था। और वाणी का भी बाबा ने आपको वरदान दिया हुआ है। कहते हैं ना कोकिल को कहाँ कुक का भान है, अपनी कुक का भान उसको पता नहीं होता है, ऐसे ही आपकी जुबान पे तो सरस्वती बैठती है, एक बार कोई आपको सुन ले तो शायद उसे कहना नहीं पड़ता कि दोबारा सुनने के लिए आना, कहना ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे बाबा की लाडले कहूं, अनन्य कहूं, महारथी कहूं, बच्चे हैं आज आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, ये सौभाग्य है आप सबका। आज कराने जा रहे हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, ये टॉपिक तो वैसे भी वही करा सकता है जो खुद निश्चय बुद्धि, और इनके तो जड़ों में बाबा 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 समाया हुआ है, क्योंकि पालना ही मम्मा बाबा से ली है, बाल्यावस्था से ही आ गए। एजुकेशन विंग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर भी हैं, बहुत सी सेवाएं देखते हैं आप, जी टीवी, सोनी टीवी, संस्कार, अब ये कॉमन बात हो गई है ना, सब पे आपके रिकॉर्डिंग्स आते रहते हैं, आपके लेक्चर्स आते रहते हैं, तो आज हमारे बीच में बहुत बहुत दिल से आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन।
ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को जन्म से यह वरदान दे दिया कि विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पर उस विजय का आधार है निश्चय। निश्चय के आधार से ही विजय को प्राप्त करते हैं। तो कौन सी विजय हमें हासिल करनी है और कौन सा निश्चय रखना है उसके लिए और फिर क्या करना है, क्योंकि निश्चय है फाउंडेशन, नींव, विजय है उस बात की प्राप्ति, और दोनों के बीच में है हमारा पुरुषार्थ। तो बाबा ने तो हमको बहुत ऊंचा लक्ष्य दे दिया है, संगम पर हमें बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, और भविष्य में देवता बनना है, विश्व का मालिक बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, यही विजय है। तो विजय हमारा ये अधिकार है, स्वर्ग के अधिकारी तुम बच्चे अवश्य बनोगे, बाबा हमें वर्षे के रूप में ये अधिकार दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो हम भगवान से मांगते थे, भगवान शांति दो, सुख दो, शक्ति दो, लेकिन शांति सुख शक्ति ये तो लगता था जैसे पता नहीं कोसों दूर है। तो भिखारी बन करके मांगते रहे पर भीख भी नहीं मिली। पर अभी तो बाबा कहते मैं अधिकार के रूप में तुमको देता हूं, 21 जन्मों के लिए देता हूं, गारंटी है। कोई माल गारंटीड होता है ना, तो ये तो गारंटी है, इसकी 3 साल की गारंटी है। कुछ भी होगा तो हमको कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा, आप ठीक कर देंगे, 3 साल की गारंटी है, वारंटी, आजकल वारंटी कहते हैं। परंतु उसके लिए फिर कुछ डूज एंड डोंट्स भी है ना, सावधानियां भी है कि ये अगर होगा तो वारंटी नहीं चलेगी। हा? पानी में गिर गया, टूट गया, तो ये सब वारंटी नहीं चलेगी। तो कुछ नियम भी है, कुछ मर्यादाएं भी है। तो बाबा भी हमको गारंटी तो करते हैं, शिव बाबा के बच्चे बने तो निश्चित रूप से आप विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। भगवान का ये वर्षा है, हथेली पर बाबा बहिष्ठ लाए हैं, इसमें कोई संशय उठ ही नहीं सकता है। क्योंकि कौन कह रहा है, आज भी मुरली में सुना ना, अर्जुन को क्यों ये निश्चय नहीं बैठ रहा था, भगवान कहते युद्ध करो, भगवान कहते मुझे याद करो, भगवान जो कुछ कहते उसमें संशय उठ रहा था। सबसे बड़ा संशय मैं कैसे मारूं, भगवान कहते मारो, कैसे मारूं, क्या हो, पाप चढ़ेगा, क्या क्या अर्जुन को अंदर ही अंदर कितनी भ्रांतियां थी, कितने भ्रम थे। तो भगवान ने उन भ्रम और भ्रांतियों को दूर करने के लिए सारा 18 अध्याय का ज्ञान दिया, कैसे मारूं। ये मेरे मामा चाचा काका गुरु गुसाई जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना आगे बढ़ाया, उनको मार डालूं, सब कौरव के पक्ष में है, कैसे मारूं। तो भगवान ने पहला ज्ञान तो यही दिया कि इनको तुम आत्मा देखो, इनको देह क्यों देखते हो, आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, आत्मा तो मरती नहीं है, इसलिए तुम आत्मा देखोगे तो तुम मार नहीं रहे हो, तुम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हो, आत्मा तो मरती नहीं है। अच्छा, आत्मा मरती नहीं तो कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य कैसे निभाओ, क्योंकि ये भी मारना तो होगा ही, इतना पाप चढ़ेगा मेरे ऊपर। तो जो भगवान कहे उसमें संशय उठाए। फिर भगवान ने कहा तुम कर्तव्य को पहचानो, तुम कौन हो। कर्तव्य भूल गया, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का काम ही क्या है, जो व्रत लिया है, जो संकल्प किया है उसको पूरा करना ही है। धर्त परिय धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, ये वचन लिया है कि हमको युद्ध करना है। वचन से पीछे कैसे हट सकोगे, कायर कहलाओगे। अगर नहीं युद्ध करोगे तो आपकी जो आगे की पीढ़ियां भी आपको माफ नहीं करेगी कि हमारे पूर्वज तो कायर थे, इसलिए करो युद्ध, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, तुम पीछे नहीं मुड़ सकते हो। क्षत्रियों के लिए कहते हैं ना, या तो विजयी होकर आओ या तो युद्ध स्थल पर मर जाओ, पर हार खा के नहीं आओ। उनकी स्त्रियां उनको विजय का तिलक लगाती थी जब जाते थे रणभूमि में, क्षत्रिय ही थे, राजा के सारे क्षत्रिय ही थे सारे, तो विजय का तिलक की जीत प्राप्त करके ही आना, हार खा के मुंह नहीं दिखाना। इतनी शौर्यवान थी वो क्षत्रिय औरतें भी। तो इसीलिए क्षत्रिय हो तो तुमको ये कर्तव्य अपना निभाना है, आप पीछे मुड़ नहीं सकते, वापस नहीं जा सकते हो। तो फिर अर्जुन को आता है, मैं तो उससे भले वापस जाऊं, ये कर्तव्य मुझे नहीं करना है, मोह के वश था। तो मोह एक बहुत बड़ा विघ्न उसके अंदर में अटका हुआ था, तो ये भगवान मुझे कह रहा है ये भी नहीं उसको समझ में आ गया आया। वो बताया ना बाबा ने उसको क्या समझ रहा है, ये तो मेरा सखा है, क्योंकि सखा रूप में ही उसको देखा कृष्ण को। फिर जब ये नहीं समझा अब अर्जुन की, अर्जुन ने ये बात, तो भगवान ने फिर तीसरा रूप कहा, सब मोह को नष्ट करने की बातें थी। तीसरी बात क्या कही कि हे अर्जुन देखो, तुम अगर नहीं मारोगे ना तो इनकी मृत्यु तो निश्चित ही है। तो दिखा दिया एक सारा मुर्दा घर, सब मरे पड़े हैं, एकदम कब्रस्तान हो गए हैं सब, इसका अंत ऐसे ही आना है, ये सब मरने वाले हैं, इनकी मृत्यु निश्चित है, तो मार नहीं रही हो, केवल निमित्त बनो, इनकी मौत तो होनी है, तुम खाली अपना जो आपका कर्तव्य है बस निभाओ, देखो सब मरे पड़े। तो उसको तो और ही दुख हो गया है, सब मेरे कारण मर जाएंगे, मुझे नहीं मारना है, इतना बड़ा पाप नहीं मुझे करना है, मैं नहीं मारना चाहता हूँ। पर कौन कह रहा है ये तो उसको बुद्धि में था ही नहीं है, खाली अपना ही, अपने आप को ही देख रहा है, अपना ही मोह उसको सता रहा है। तो ये सब मरे पड़े हैं ये भी उसको समझ में नहीं आया, इनका निश्चित ही इनकी मौत होनी है, इसलिए तुम सिर्फ निमित्त बनो बस और कुछ नहीं करो। तो निमित्त भी नहीं बनने को तैयार। फिर भगवान ने फिर चौथा रूप रचा कि अरे तुमको पता हो कि ये इस युद्ध में तुम विजयी होने हो और विजयी होकर तुमको स्वर्ग का अधिकार मिलेगा, इसलिए सिर्फ निमित्त बनो, स्वर्ग तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, बस तुमको इस युद्ध में विजय पानी और स्वर्ग तुमको अधिकार मिलेगा। तो क्या कहते हैं, मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं ऐसा क्या स्वर्ग मैं लूं जो इन सबको मारूं और स्वर्ग लूं, तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। तो फिर भगवान ने कहा अरे भले तुम स्वर्ग में राजा ही नहीं करो, पर अगर इस युद्ध में तुम मर भी गए ना तो तुम स्वर्ग में जरूर आओगे, इसलिए जो युद्ध में जाते हैं उनको कहते हैं तुम स्वर्ग में आओगे, क्योंकि युद्ध में मरते हैं। पर ये युद्ध किसके साथ है, माया के साथ है, तो तुम स्वर्ग में जरूर आओगे और तुम विजयी बनोगे, ये निश्चित है, निश्चय रखो, निश्चय पक्का कराता है वह। लेकिन फिर भी वो निश्चय बुद्धि बन नहीं रहा था क्योंकि मोह सता रहा था, मोह विघ्न था। फिर जब देखा कि ये चौथा रूप भी अर्जुन नहीं समझ रहा है, तो फिर अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान ने क्या किया, अपने विराट रूप का साक्षात्कार कराया, सब कैसे मौत के मुंह में जा रहे हैं, सारे सब मच्छरों सदृश उड़ रहे हैं, विनाश, अपना ज्योति रूप, बस करो बस करो भगवान बस करो, अभी मुझे समझ मिली है कौन मुझे कह रहा है, ये कोई मेरा मित्र सखा नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहा है। बस गीता तो यही है ना, पर वो 18 अध्याय बना दिए हैं केवल अर्जुन का मोह नष्ट करने के लिए, सारा ज्ञान दिया और निश्चय बुद्धि विजयंती बनने के लिए ज्ञान दिया। तो जब अर्जुन को ये रियलाइज हुआ कि मुझे ये कौन कह रहा है, तब उसको अरे ये तो स्वयं भगवान कह रहा है, तो तदमस्तक हो गया, घुटने टेक दिए और कहा आप जो कहेंगे मैं करने लिए तैयार हूँ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे स्मृति आ गई है कि मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो देखो बाबा हमको यही तो कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती बनने के लिए ही सारा गीता का ज्ञान है। और कैसे निश्चय बुद्धि बने, किस बात में निश्चय बुद्धि बने, तो बाबा हमको बताते हैं कि चार बातों में निश्चय बुद्धि होना है। पहले खुद में निश्चय, मैं कर सकता हूँ, अपनी अंदर में इतनी हिम्मत हो, जिसके लिए बाबा हम बच्चों को स्वमान याद दिलाते तुम कौन हो, तो वो स्वमानों को याद करना माना स्वयं में निश्चय रखना। स्वमान याद है उस स्वरूप अनुसार, उसमें उसमें वो स्वरूप बन रहे हैं, तो विजय तो निश्चित है ही है। जब चंद्रकला बहन सरस्वती की बात कह रही थी तो ये अव्यक्त बाप दादा का वरदान था मुझे। मैं तो एक दिन अनायास बस गई टोली लेने के लिए, बाबा तो मिलते थे और पर एक ग्रुप बाप के बाबा के सामने था, वो उनका मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, इंग्लिश हिंदी नहीं समझते थे तो ट्रांसलेशन किया, जो बाबा ने उनको कहा वो तो ट्रांसलेट किया। फिर लास्ट में जैसे वही बाबा के सामने गए टोली लेने लिए, तो मुझे कोई संकल्प नहीं था कि बाबा मुझे भी कोई वरदान देंगे। तो जैसे ही मैं बाबा के सामने गई बिल्कुल निर्संकल्प होके टोली जैसे हाथ आगे किया, तो बाबा ने टोली मेरे हाथ में पकड़ाई और जोर से पकड़ा और बाबा ने वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है। ये बाबा ने वरदान दिया उस समय, आज से 20 साल पहले की बात होगी। मैं तो मधुबन में रहती थी, 1992 या 1993 कुछ ऐसा था। तो मेरे उसके बाद तो जो जिन्होंने सुना, क्योंकि माइक पर बोला बाबा ने, ऐसा नहीं कि माइक के बिना बोला, तो सब ने सुन लिया, तो सब मुझे चिढ़ाने लगे, वाह वाह बाबा ने सरस्वती का टाइटल दे दिया, तो संगम की सरस्वती भविष्य की लक्ष्मी जरूर बनोगी। यानी प्रोत्साहित किया, तो मैंने कहा वो तो बाबा जाने जो बाबा देंगे। लेकिन मेरे मन में उथल पुथल हो गई, मैं बहुत सोच में पड़ गई, ये बाबा ने इतना बड़ा वरदान दे दिया, बाबा मुझसे क्या चाहते हैं? इतना बाबा ने मुझ में विश्वास रखा, नहीं तो इसीलिए ऐसे थोड़ी भी कोई इस प्रकार का वरदान किसी को ऐसे नहीं मिला कभी तक। ये बाबा ने कैसे वरदान दे दिया, क्या बाबा मुझसे चाहते? ये नहीं कि हाँ मैं तो हूँ सरस्वती, वो अभिमान नहीं, परंतु अंदर में सोच क्या चाहते होंगे बाबा मुझसे। जरूर बाबा को मुझसे कोई बड़ा काम करवाना है और उसके लिए शक्ति भरी बाबा ने ये वरदान दे करके, तो क्या कार्य कराना है बाबा को। पर एक बात जरूर है, इतना बड़ा वरदान भगवान ने दिया है तो इस जुबान से कोई भी कड़वा शब्द, कोई भी ज्ञान के विपरीत कोई शब्द कभी निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान की वीणा बजाने वाली ये जीव है। तो ये तो मेरे अंदर में निश्चय बैठ गया, कुछ भी हो जाए कोई भी बाबा व्यर्थ अशुद्ध तो नहीं, व्यर्थ भी नहीं, मतलब न सुनना है न बोलना है न देखना है, एक तो ये निश्चय बैठ गया। परंतु उसके बाद थोड़े समय के बाद ये टीवी के लेक्चर्स का निमंत्रण मिला, करुणा भाई को मिला, करुणा भाई ने दादी जी को कहा, दादी जी ऐसे अभी तो उस समय जी टीवी शुरुआत ही हुई थी और जी टीवी प्राइवेट चैनल से प्राइवेट चैनल है, तो तब तक तो केवल दूरदर्शन ही था, वो तो गवर्नमेंट चैनल, तो गवर्नमेंट चैनल में तो कोई भी संस्था को कोई भी स्थान नहीं, क्योंकि वो कहते थे एक संस्था को देंगे तो सारी संस्थाएं मांगेगी, आप अकेले थोड़ी हो, इसीलिए कोई भी संस्था को भले कोई भी प्रकार का प्रचार करने लिए नहीं देंगे। लेकिन जब ये बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ ना, हिंदू मुसलमानों के राइट्स हुए, तब ये चैनल चालू हुआ। उसके बाद 1992 में हुआ ये जब बाबरी मस्जिद, 91 या 92 हाँ उसके बाद। तो दादी जी को कहा, तो दादी जी को लगा बस थोड़ा सा एक लेक्चर देकर आना है, टीवी में दे देंगे, तो मुझे कहा चलो तुम जाओगी और वहाँ टीवी में लेक्चर देना है। तब उसके पहले कोई टीवी भी ये मधुबन में कभी सोचा भी नहीं था ना, यानी कुछ भी नहीं था, ये तो सब बाद में बनाया उसके। तो मैंने कहा दादी मुझे क्या बोलना होगा, क्या बोलना होगा? तो दादी ने कहा वो करुणा भाई से पूछ लो, तो आप जाओ। तो करुणा भाई ने मुझे कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो ऐसे है ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस जब योग शिविर जो कराते बस वही सुनाना, वो तो आप कराती रहती हो योग शिविर, तो सुन वही सुनाना, कुछ वो और थोड़ी कुछ सुनाना होता है, वही ज्ञान है जिसको जो आपको सुनाना है। मैंने कहा ठीक है, वो तो मेरा तो ये तो मेरा रूटीन है, राजयोग शिविर कराती हूँ। तो मैं मुंबई गई ना उनके पास, तो वो बहन थी, वो उस स्पिरिचुअल टॉक्स की डायरेक्टर जी टीवी की, तो उसने मुझे कहा अच्छा आप लेक्चर देंगे, तो मेरे सामने कई शर्तें रखी कि अपने संस्था के बारे में नहीं बताना है, अपने गुरु के बारे में नहीं बताना है, आपको अपने धर्म के बारे में नहीं बताना है, कोई भारत की भी महिमा नहीं करनी है, तो न संस्था की महिमा, न भारत की महिमा, न गुरु की महिमा, न धर्म की महिमा, न कोई भगवान के बारे में कुछ, क्योंकि ये 60 देशों में जाएगा सैटेलाइट के थ्रू, 60 देशों में जाएगा, तो सब धर्म वाले सुनेंगे, इसीलिए ये चार बातें नहीं और पांचवी बात कही, किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, किसी की मना ग्लानी भी नहीं करनी है, ये सब नहीं करना है। तो फिर मैंने कहा चेक करना क्या है पहले नहीं जो करना है वो बोला, वो कहा, तो कहते अच्छी अच्छी बातें सुनाओ समाज के हित के लिए, अच्छी अच्छी बातें। तो फिर उसने कारण बताया कि जो हिंदू मुसलमानों के इतने राइट्स हुए हैं, तो कैसे सब प्यार प्रेम से चले, बस एकता होकर के रहे, कुछ अच्छी जीवन में बातें लाए, जीवन में नैतिक मूल्य आए, बस यही बातें करनी है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो बस मुझे कहा अभी जाओ स्टूडियो में और वहीं रिकॉर्ड करो, स्टूडियो उनका वहीं था। तो मैं बैठ गई पहली बार टीवी, वो जो कैमरा के आगे, तो मुझे वो कैमरामैन कहता, और सामने कोई नहीं, खाली मैं अकेली, तो कैमरामैन कहता है, मैंने कहा सामने कोई हो तो मैं अच्छी तरह बोलूं ना, यानी किसके आगे बोलूं, तो कहता है बहन जी ये जो लेंस है ना इसमें आपको देखना है, और ये लेंस में आप ये सोचो लाखों आंखें आपको इस लेंस से देख रही है, लाखों आंखें इस लेंस से आपको देख रही है, जो टीवी कैमरा की लेंस से, बस ये इनको ही देखना है। और फिर क्या बड़ी बात तो ये थी, वो ऐसी कैमरा थी या लेंस ऐसे ऐसे रखा था, उसके वो जैसे नहीं ट्रेन के वो पटरी होती है, वो कैमरामैन बैठा है और वो कैमरा लेकर के और वो पटरी पर घूम रहा है, तो कहते जहां ले कैमरा जाए वहां तुमको देखना है तो अगर क्योंकि वो यहां से यहां फिर रहा है तो मुझे यहां देखकर फिर ऐसे देखना है और बोलना है, अब वो अब बोल पर ध्यान दू या वो कैमरा पर ध्यान दू आगे परीक्षा तो थी और पहली बार, और उसने कहा था डायरेक्टर ने अगर पसंद आया तो लेंगे आपका। अब मैं बाबा को कहा बाबा आपका ही मुझे वरदान मिला है, आपने इसीलिए वरदान दिया, आप तो सब जानते हैं और ये वरदान आपने दिया, अब बाबा आपको ही काम करना है, मेरे को तो पता नहीं क्या बोलना है। लेकिन उस समय जैसे बाबा की टचिंग आई कि बच्ची शांति पर बोलो बस और कुछ नहीं, शांति। और फिर मुझे कहा देखो 25 मिनट तक लगातार बोलना है, फिर 25 मिनट के बाद हम कहेंगे ऐसे तीन उंगली दिखाऊंगा, और माना 3 मिनट में आपको पूरा करना है, फिर 2, फिर 1, फिर ऐसे माना खत्म पूरा करो। अब मैं वही देखती रहूं ये 3 मिनट ये कब ऐसे बोले, तो पता नहीं कितना मिनट, क्योंकि घड़ी तो है नहीं सामने। लेकिन सचमुच बाबा की कमाल थी, बस मैं बैठ गई और मैंने कहा कुछ आत्मा तो बोलो कुछ, हाँ वो भले ऐसे बोलो, लेकिन ये जो 5 बातें बताई ना, अपने गुरु की बात, धर्म की बात, या संस्था की बात, या देश की बात, और किसी का क्रिटिसाइज नहीं, ये नहीं बोलो, बाकी तो जो जनरल बातें हैं संसार की, जो समाज के लिए हितकारी है, वो तो क्यों नहीं बोलो। तो बस शांति शब्द को लेकर के मैंने बोलना शुरू किया, मैंने बाबा को कहा बाबा ये आपने ही भेजा है, आपने ही ये कार्य दिया है, अब आपको ही बोलना है, मैं नहीं जानती बाबा, आई सरेंडर। मैं बस इसमें अंदर में निश्चय तो था, लेकिन वो स्वमान सूक्ष्म रूप में था, बस बाबा में पूरा निश्चय। और सचमुच मैं आपको बताऊं कमाल, मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं, और वो एकदम आ गया, मैंने ये भी नहीं देखा ये 3 मिनट कब बोल रहे हैं, वो भी नहीं, बस बाबा ने क्या बुलवाया मुझे आज तक पता नहीं है। तो बस जो कुछ बोला, और सचमुच 3 मिनट तो बहुत जल्दी आ गया कि 3 मिनट, इतना मिनट 25 मिनट हो गया पता भी नहीं चला। और फिर तो और बस मैं तो वही देखती रही और बोलती रही, क्या बोल रही हूँ पता ही नहीं, क्योंकि टीवी को देखना है ना। तो और फिर तो अब पूरा हो गया, तो मैंने कहा बाबा थैंक यू, आपने बहुत मदद की। तो फिर वो डायरेक्टर भी देख रही थी, सुन रही थी, उनके लिए भी नया नया था। तो फिर उसने कहा हाँ बहुत अच्छा बोला, बहुत ताली बजाई उसने। तो कहा बहुत अच्छा है, पास हो गए, अब आप ये हर महीने हम हर हफ्ते हफ्ते देंगे, संडे के दिन आप 3 और लेक्चर रिकॉर्ड करो। अब तो और बड़ी बात है ना, उस समय की बात करें, हर हफ्ते हफ्ते देंगे 3 लेक्चर्स और रिकॉर्ड करो, 1 मास का आपका, क्योंकि मैं तो अबू में रहती थी, बॉम्बे जाना था। तो मैं आपको क्या बताऊं, बाबा की इतनी मदद मिली, मैं बॉम्बे के सेंटर पर ही रही। तो मैं सवेरे 3 बजे उठी, बाबा अभी आपको मुझे मदद करनी है, मुझे क्या कि उस समय ये वैल्यू एजुकेशन कुछ भी नहीं था, यानी अभी जो हम वैल्यूज की बातें कर रहे हैं एजुकेशन विंग में भी, वैल्यू एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी, मतलब जो कुछ भी बातें कर रहे हैं एक एक विंग में की वैल्यूज की बात, उस समय ये अभी विंग्स भी इतना नहीं कोई डिवेलप हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया, एक अव्यक्त वाणी उठाई, अव्यक्त वाणी की किताब, उसमें किसी साल की अव्यक्त वाणियां थी। अब मैंने कहा बाबा अभी आपको ही मुझे बताना है, मुझे क्या कहना है। तो जैसे पन्ना खोला तो सारी मुरली प्रेम पर थी, सारी मुरली प्रेम, तो पत्थर को भी पिघला सकता है, मतलब ये बाबा की बहुत मुरलियां चली है प्रेम पर। वो सारी मुरली पढ़ती गई, मुझे बस नेक्स्ट टॉपिक प्रेम, पहला टॉपिक शांति, दूसरा टॉपिक प्रेम। फिर मैंने तैयार किया, कैसे तैयार किया, पॉइंट्स थोड़ी नोट की, और बाबा जैसे शक्ति दे रहा है, और मैं नोट करती जा रही हूँ कि ये मुझे कहना, इतना सुंदर तैयार हो गया सब कुछ। फिर मैंने एक तैयार किया, फिर दूसरा मैंने खोला, तो दूसरा आया खुशी, खुशी के ऊपर बाबा की मुरली चली, नोट कर लिया खुशी। तो ऐसे 4 टॉपिक्स तो बहुत सहज तैयार हो गए, और मैं अगले दिन गई फिर लेक्चर देने के लिए, तो उसको बहुत पसंद आया। फिर उसने कहा अच्छा ये 1 मास का हुआ है, अगर आप कर सको तो 52 वीक्स होते हैं, पूरे साल का आपका रिकॉर्ड कर लेके 52। मैंने कहा बाप रे, तो 4 ही किया तो 52 करना है। तो कहा कोई बात नहीं, अभी नहीं, आप भले अभी, मैंने कहा माउंट आबू जाना है मुझे वापस, तो कहा अभी जाइए, फिर नेक्स्ट मंथ आ जाइए, फिर आपका जैसे एक एक हर मंथ में आप आइए, आपका रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि 1 मंथ में, महीने में 4, 52 सप्ताह होते हैं साल में। तो फिर मैं रोज मधुबन में 3 बजे उठ करके कोई ना कोई अव्यक्त मुरली लेती थी, और ऐसे 52 लेक्चर्स मैंने तैयार किए। कैसे बाबा की कमाल, हाँ कहाँ से वो शक्ति आ गई, बाबा ने ही दी। तो देखो ये इसी बाबा की कमाल है, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती, स्वमान भी क्यों नहीं था, बाबा ने मुझे वरदान दिया है, बाबा ने दिया है, तो वो स्वमान भी जागा जरूर। और फिर बाबा में निश्चय, तो स्व में निश्चय, बाबा में निश्चय, फिर आता है परिवार में निश्चय, बहुत निश्चय। हमारे जैसे, हमारे से तो बहुत अच्छी अच्छी भाषण करने वाली होगी, लेकिन सब ने मुझे आगे बढ़ाया, सब हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि लोग सुनते थे तो बहुत ही महिमा करते थे। तो कई बार लगता था कि मेरे से तो बहुत अच्छा और भाषण करने वाले हैं, हमारी बड़ी बड़ी दादियां हैं, दादियों को करना चाहिए, मैं तो बहुत छोटी हूँ उसकी भेंट में, पर दादी जी कितने ही नहीं, तुम जाओ बाबा पर छोड़ो, बाबा तुमसे करवाएगा। यानी थोड़ा सा आता था कि और भी है ना, मतलब वो भी करे, नहीं तुमको ही जाना है, तो मैं जाती थी। तो कैसे हमने ये 56 लेक्चर्स तो 52 लेक्चर्स तो पूरे रिकॉर्ड कर ही लिए। फिर जी टीवी के बाद फिर सोनी टीवी वालों ने निमंत्रण दिया, तो लेक्चर्स तो वही दिए क्योंकि सब थोड़ी देखते एक साथ, तो फिर रोज आने लगा। फिर तो ये हो गया कि कुछ लोगों ने समझ लिया कि मैं ही हेड हूँ, क्योंकि औरों के भी आने लगे ना, और हेड जो और संस्थाओं के जो प्रमुख थे उनके आते थे, और या मेरा आता था भी, जैसे शिवानी का आता है, लोग समझते ये शिवानी मतलब कुछ होगी, पर वो तो अपने घर में रहती है, बाबा ने देखो कैसे उनको उठाया है। तो बाबा के सामने जब शिवानी गई थी तो बाबा उसने मतलब बाबा के आगे खड़ी रही तो बाबा ने कहा ये तो वरदानी आत्माएं, बस और कुछ कहा ही नहीं, वरदानी आत्माएं, बस टोली दे दी, वो है ही वरदानी आत्मा, पर मुझे तो उस समय दिया वरदान। तो यानी कहने का भाव है कि हाँ, फिर एक कोई कलकत्ता से आया, उसने क्योंकि वो ही रिकॉर्डिंग फिर जो होती थी ना, वो रात को 12 बजे भी आती थी, तो एक व्यक्ति बहुत स्ट्रेस था, बहुत स्ट्रेस, तो उसको नींद ही नहीं आ रही थी, तो अचानक उसने टीवी खोली और हमारा लेक्चर आ रहा था उसमें, और उस लेक्चर में क्योंकि तनाव मुक्त जीवन ये मैंने लेक्चर दिया था, और सचमुच वो सुनता गया उसका तनाव दूर हो गया, उसको इतनी अच्छी नींद आ गई, तो उसने कहा मैं ये ब्रह्मा कुमारीज में जाऊंगा, हेडक्वार्टर्स में जाऊंगा, तो यहाँ पहुंच गया और कहा मुझे आपके हेड से मिलना है। अब हेड से मिलना है, कौन है हेड? बस आपके हेड से मिलना, वो शिलू बेन जो आप दिन का आता ना, कहा वो तो हेड नहीं है। कहा अच्छा हेड नहीं है, तो हमको लगा यही है क्योंकि इनके ही लेक्चर आते हैं। तो ये तो दादी जी की कमाल थी, दादी जी ने कितना आगे बढ़ाया, दादी जी की विशेषता थी। हम तो इसलिए दादी की जब बातें सुनाते हैं तो कई लोग दादी जी से पूछते थे, मीडिया वाले दादी से पूछते थे कि दादी इतनी बड़ी संस्था आप चलाती हो, कैसे चलाती हो इतनी दिन दुगनी रात चौगनी गति से, ये संस्था इतनी आपकी बढ़ती जा रही है आगे, और इतनी सारी बहनें समर्पित हो रही है, ये सब आप कैसे कर रही हो? तो दादी ने एक शब्द कहा, वो शब्द था विश्वास। मेरा सब में विश्वास है। आप देखो इस शब्द की कितनी गहराई है, विश्वास है, ये विश्वास एक ऐसा आधार है जिससे ये संस्था बढ़ रही है। आज दुनिया में क्यों लोग अकेले पड़ जाते हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है किसी पर भी, विश्वास नहीं है तो अकेले पड़ जाओगे, सब अलग हो जाएंगे, विश्वास ही नहीं है किसी पर यहां संगठन की शक्ति, इस संगठन की शक्ति में विश्वास। और आज जैसे बाबा ने बहुत सुंदर बात कही मधुबन की बहनों को, पर है सबके लिए कि हर एक की विशेषता देखो, क्या देखो? विशेषता। मैंने बताया ना कि एक बहन थी, बहुत बूढ़ी थी मतलब, पर इतनी शक्तिशाली, बहुत तेज थी। अभी तो शरीर छोड़ दिया, मधुबन में ही शरीर छोड़ा उसने, पुरानी पुरानी यज्ञ की पुरानी, परंतु वो संस्कार कहाँ जाते हैं, इतना तो जाते नहीं, बस अपना खाना बनाती थी, अपनी सिगड़ी उसकी थी, इतना बर्तन, किसने भूल से भी उसके बर्तन को भी हाथ लगा लिया, बस उसको कुछ छू लिया, बस बहुत, कितना दादी उसको समझाती थी पर वो समझती नहीं थी। तो दादी के पास शिकायत जाती थी, दादी ये देखो इतना गुस्सा करती है, दादी कहती थी देखो बस, वो दादी चंद्रमणि का मिसाल दिया, पर चंद्रमणि ने कहा भले कैसी भी है देखो, लेकिन बाल ब्रह्मचारिणी है, पवित्र है, देखो आजकल तो कितना खराब जमाना है, आप इसकी पवित्रता देखो, क्योंकि अछूत वो अपने आप को मानो हाथ भी नहीं किसको लगाने, जैसे कि बहुत खुद बड़ी शुद्ध है और बाकी सब ऐसे। खैर लेकिन मेरे से बहुत प्यार था उसका, मेरे को तो बुला करके वो बनाती थी ना, वो खिलाती भी थी, खाओ खाओ थोड़ा खाओ, और दूसरों को नहीं नहीं बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। हाँ तो मैं तो कहती थी पर गुस्से वाली है, मैं इसका खाऊंगी कैसे। खैर नहीं, एक वो तो हंसी की बात, लेकिन मेरे से बहुत प्यार था। वो पारी दादी वाले मैंने है ना, ये भी जानती है उसको, परंतु फिर मीठी इतना अच्छा बोलती भी थी, या फिर देखो तो गुस्सा भी कर रही, परंतु चलो है, थी तो बाबा की समर्पित बच्ची। परंतु ये विश्वास हो हमारा कि बाबा ने जिनको चुना है वो कोई विशेषता के आधार पर ही चुना है, ऐसे थोड़ी चुना है, ऐसे ही चुना है क्या? हाँ, बाबा माताओं को कई बार कहते हैं, भले दुनिया ने माताओं को ठुकराया, जैसे कई कहते हैं भाई ये पुरुष की तो वो बाएं पैर की जुत्ती, वो ना वो क्या बोलते हैं, बाएं पैर की वो एड़ी, बाएं पैर की, दाएं की भी नहीं, बाएं पैर की एड़ी है, वीकर सेक्स या कहेंगे कमजोर वर्ग। और भगवान ने क्या कह दिया, शिव शक्ति है, स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, नारी शक्ति महान है। मानो बाबा ने कितना ऊंचा चढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, आगे किया। भाइयों को कहा आप गार्ड बनो, गाइड नहीं बनो, गार्ड बनेंगे तो आपकी रक्षा है। बहन को गाइड बनाओ, बहन को गाइड बनाएंगे, भाई गार्ड रहे तो दोनों की सुरक्षा है, बहन की भी और भाई की भी। लेकिन ये तब सब होगा जब हर एक की विशेषता देखो। यही तो है देवी परिवार, ईश्वरीय परिवार, जो सत्यु का परिवार बनना है। यही तो चलेंगे ना स्वर्ग में, हम सब मिलकर चलेंगे। फिर वहां तो पता नहीं चलेगा ये फलानी थी कौन थी संगम पर, लेकिन यही आत्माएं होंगी ना। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, लोग कहते हैं इतने सब देवताएं थे तो कहां चले गए। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है भारत में, वो सब कहां चले गए, कहां गए, यहीं बैठे यहीं बैठे हैं। तो जब हम शिविर में ये बात कहते हैं ना, कहां चले गए, पूछती दो तीन बार तो कोई जवाब आ जाता है, वो तो स्वर्ग में चले गए। याद तो कहेंगे वो तो उनको तो मोक्ष मिल गया। तो हमने कहा नहीं, जो आत्मा सृष्टि पर आती है बीच में वापस नहीं जाती है, कर्म की गति में ये तो पॉइंट देती हूं। वो सब कहां गए, तो ये सब ओम शांति भवन में बैठे हैं, मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं, डायमंड हॉल में बैठे हैं। एक दो को देखो, ये सब 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता है तो सब एक दो को देखने लगते हैं जैसे एक मिसाल देते हैं, कहानी, मतलब कहानी नहीं है लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जिससे हम बहुत सीख सकते हैं कि एक ये बोधियों की बोधि लोग हैं ना, उनकी किताब में आता है। तो एक बोधियों के मठ में आपस में बहुत लड़ते थे आपस में बोधि लोग, वो जो उनके जो मॉन्क्स होते हैं तो बहुत लड़ते थे। तो उनका जो हेड था वो बड़ा परेशान हो गया कि आपस में बहुत लड़ रहे हैं। तो वो दूसरे किसी मना संगठन में गया, बोधियों का संघ, जहां उसने देखा कि वहां तो कितनी शांति है, कितना सब में प्रेम है, पर हमारे यहाँ तो लड़ते ही रहते हैं आपस में। तो क्या आप इनको शिक्षा देते हो, उनके हेड से पूछा, जो ये इतना प्रेम से रहते और आप इतना लड़ते हो। तो कहा कि मैं इनको ये कहता हूं कि इस संगठन में कोई अवतारी पुरुष विराजमान है, एक अवतारी पुरुष इस संगठन में विराजमान है, आप ढूंढो कौन होगा वो अवतारी पुरुष। वो अवतारी पुरुष शब्द कहते हैं। तो सब एक दो को देखने लगे, कहीं ये अवतारी पुरुष तो नहीं, कहीं ये अवतारी पुरुष तो नहीं। अवतारी पुरुष तो बहुत बड़ी चीज है ना, अवतार, जैसे बुद्ध को भी अवतार मानते। तो कोई सोचने लगे शायद मैं तो नहीं हूं, तो मैं अगर अवतारी पुरुष हूं तो मुझे कैसे व्यवहार करना है सबके साथ, ये अवतारी पुरुष है तो मुझे इनके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो इसलिए सारे बदल गए, क्योंकि हर एक समझता है पता नहीं कौन होगा इसमें अवतारी पुरुष, मैं हूं या कोई, तो मुझे सबके साथ कैसे व्यवहार करना है। ये उनकी भाषा अवतारी पुरुष। अब यहां पर ये सोचो, सब होवनार देवताएं, सब 33 करोड़ में से कोई ना कोई देवता है, तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना प्यार प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। तो परिवार में निश्चय, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ये तो हम बहुत कहते हैं, पर परिवार में भी निश्चय हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मन में किसी के प्रति भी घृणा है, चलो कोई कारण से घृणा हुई, कोई ऐसी भूल हो गई, कुछ बात हो गई, और उसको हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्षमा न करना, चलो बदला तो नहीं लेंगे, वैसे तो कहा जाता क्षमा करो और भूल जाओ, बदला मत लो, बदल कर दिखाओ, ये एक बहुत ऊंची बात है। चलो बदला नहीं लेंगे, चलो खुद को बदल के भी दिखाएंगे, क्षमा कर लेंगे, पर उस बात को भूल जाना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे वो सामने आएगा ऐसे वो करेंगे, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, अभी तक भूले नहीं है। और उनसे बड़ी बात ये होगी, अगर दूसरे को आप नहीं बात दूसरे की बात भूल नहीं पाए हो, इसका मतलब क्षमा तो उसको कर लिया पर खुद को क्षमा नहीं कर रहे हो। खुद को भी क्षमा करना है, क्योंकि अगर घृणा है, नफरत है, थोड़ी सी वो बातें याद है, पुरानी बातें, और फिर थोड़ी थोड़ा मुंह बदल दिया या मोड़ दिया, माना खुद को क्षमा नहीं किया, क्योंकि अंदर में दुख तो होगा ना, कि नहीं होगा? होगा जरूर। माना खुद को क्षमा नहीं किया आपने, तो उस बात को भुलाना भी पड़ेगा अगर खुद को क्षमा करना है। तो दूसरे को क्षमा करना बड़ा आसान है, ठीक है चलो जाने दो, छोड़ो छोड़ो तो छूटो, पर उसका छोड़ा और खुद को पकड़ लिया, खुद को क्षमा नहीं दे सकते, कर सकते चलो, पर बाबा कहते क्षमा क्या करो, प्यार करो, क्षमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, खुद को भी प्यार करो, खुद को भी उसी प्यार से देखो। हम तो देखते हैं दुनिया में कितने लोग खुद से प्यार ही नहीं है, खुद से प्यार नहीं, माना अपने से इतनी नफरत, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मैं तो मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, मेरे अंदर कोई हे भगवान क्यों मुझे जन्म दिया, माना इतनी अपने से नफरत। तो बाबा कहते हैं उसके लिए स्वमान जगाओ, स्वमान जगाओ, अंदर में अगर कोई भी प्रकार का डर है, ये भी स्वमान की कमी है, स्वमान की कमी है। किसका भी क्यों डर हो, डर क्या करेगा वो, चलो सबसे बड़ी बात ये करेगा कि मार डालेगा ना, और क्या करेगा, कोई बात नहीं, आत्मा तो मैं अमर हूं। जो बाबा कहते हैं भले शरीर चला जाए लेकिन क्या न जाए, खुशी न जाए, क्योंकि खुशी ज्यादा कीमती है, शरीर से भी ज्यादा कीमती खुशी है, वो आत्मा का मूल स्वभाव है, यही मेरा स्वमान है, खुशी न जाए। जैसे कहते हैं ना, चरित्र गया तो सब कुछ गया, धन गया कुछ नहीं गया, धन तो हाथों की मैल है, वो तो चढ़ेगा उतरेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, गया तो फिर आएगा। स्वास्थ्य गया कुछ गया, क्योंकि स्वास्थ्य अगर बिगड़ता है ना तो फिर जल्दी हाथ नहीं आता है, एक बार स्वास्थ्य बिगड़ा तो आया तो घोड़े पर चढ़कर, वो बीमारी घोड़े पर चढ़ के आ गई, पर जाती है तो चींटी की चाल से जाती है, इतना जल्दी नहीं जाएगी, एक बीमारी गई तो दूसरी आ जाएगी, उसके साइड इफेक्ट्स होते रहेंगे दवाई जितनी खाओ। तो इसीलिए स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। क्यों सब कुछ गया, क्योंकि वो आत्मा पर दाग लग जाता है। स्वास्थ्य गया तो चलो भी कुछ वो ऑपरेशन किया तो दाग लग गया, ऑपरेशन के टांकियों का दाग लगता है, चलो फिर भी दो चार साल के बाद वो मिट जाएगी दाग। पर चरित्र गया तो जो आत्मा पर दाग लगा वो दाग थोड़ी मिटेगा, तो इसलिए हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं, चरित्र गया तो सब कुछ गया, एक जन्म के लिए केवल नहीं गया, जन्म जन्म के लिए गया, क्योंकि वही संस्कार आत्मा अपने साथ ले जाएगी, तो अगले जन्म में वही संस्कार ही होंगे, है ना? जैसे हम ये भी कई लोगों को कहते हैं कि भाई कोई जैसे कोई मरता है तो हम कहते हैं हे प्रभु इनको शांति मिले, इनको शांति दे, पर जिसने जीवन में सारे जीवन में शांति अनुभव ही नहीं की, सारा जीवन अनुभव ही नहीं था, शांति होती क्या चीज है, तो इस जन्म में तो उसको शांति अनुभव ही नहीं हुई, तो अगले जन्म में होगी क्या, होगी क्या, समझते हैं? नहीं होगी, नहीं होगी, ये कड़वा सत्य है। भले हम कितना भी भगवान को कहे भगवान इनकी आत्मा को शांति देना, पर नहीं मिलेगी शांति, क्योंकि इसने पूरा जीवन ये अनुभव ही नहीं किया, संस्कार ही नहीं बनाया। शांति है तो अभी है, अभी नहीं है तो कभी नहीं है, ये मन की स्थिति है। इसीलिए बाबा स्वमान में रहने लिए कहते आत्मा का मान, बताया ना उस दिन, स्व का मान, कुछ भी हो जाए मेरी शांति भंग न हो, कुछ भी हो जाए मेरा प्रेम किसी से कम न हो, कुछ भी हो जाए मेरी खुशी कम न हो। तो ये तब होगा जब स्वमान होगा। तो स्वयं में निश्चय, फिर बाबा में निश्चय, तो शक्ति बनी रहेगी। क्योंकि कौन है मुझे पढ़ाने वाला, कौन है, ये भूल जाते हैं, तब स्वमान भी खत्म हो जाता है। टीचर हमारा कितना बड़ा, हम तो दुनिया में देखते, एक भाई आया था, उसको इतना नशा, वो जहां जाता था कहता था मेरा जो टीचर था ना वो सर्वपल्ली राधा कृष्णन था, जो प्रेसिडेंट था भारत का, वो प्रोफेसर था, पहले प्रोफेसर था, तो उसके अंडर कितने स्टूडेंट्स थे और बहुत ही लर्निड, सर्वपल्ली राधा कृष्णन यही नाम था ना, तो राष्ट्रपति था। तो उसका स्टूडेंट एक बार आया था, तो वो अपना अनुभव सुनाता था कि वो क्या प्रोफेसर था, जो कुछ एक बात कहता हम लोगों की बुद्धि में इतना छप जाता था जो कभी भूलता नहीं था। और एक दूसरे प्रोफेसर का वर्णन किया, वो आता था क्या बोल रहा है पता ही नहीं, बताओ इतना कॉन्ट्रास्ट। तो बड़ा नशा था कि हमारा प्रोफेसर स्वयं भारत का राष्ट्रपति बना, ये सबको सुनाता था। तो बताओ एक इंसान के बारे में इतना नशा और हमको क्या नशा होना चाहिए है? हमको पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। देखो अर्जुन को ये नशा नहीं चढ़ा, तभी तो प्रश्न किए। पर जिस समय नशा पता चला, नशा चढ़ा, एक सेकंड में उठाया तीर कमान, सरेंडर हो गया, उठाया, कहां से आ गई शक्ति? जो 18 अध्याय तक तो शक्ति ही नहीं थी, वो शक्ति कहां से आई? स्वमान से आई। हाँ मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, मेरा साथी स्वयं भगवान है। फिर भगवान ने ये कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, करना तुमको ही है। कई कहते हैं ना कि अर्जुन को भगवान ने ऐसे क्यों कहा, कृष्ण खुद ही उठा लेता था ना तीर कमान, अर्जुन को ही क्यों कहा? मैं नहीं करूंगा कुछ, मैं तुम्हारा वो रथ हाकूंगा भले, परंतु करना तुमको है। क्यों? क्योंकि निमित्त बन के करना है, पर तुमको ही करना है। क्यों? क्योंकि पाना भी तो तुमको ही है, जो करेगा सो पाएगा। मुझे तो कोई स्वर्ग का सुख लेना ही नहीं है, तो बाबा क्यों करेगा? हिम्मत तो तुमको ही रख नहीं है, मदद भले करूंगा पर हिम्मत तुम रखो। कई तो इतने कमजोर कहेंगे, बाबा हिम्मत भी आप ही दो। बताओ हिम्मत भी आप ही दो तो करे भी वही ना आपको, आप क्यों करो? हिम्मत भी अगर वही दे, हिम्मत तो आपको रखनी होगी ना, अंदर में स्वमान जगा करके हिम्मत रखनी होगी। तो हमको भी वो स्वमान आता था, बाबा ने ये वरदान दिया है, अभी ये मुझे मौका मिला है ये वरदान को सिद्ध करने का, तो हिम्मत आती थी। बाबा आपको मदद करनी है, तो हिम्मत रखे बिना थोड़ी मदद मिलेगी। इसीलिए स्वमान रखना माना अपनी हिम्मत रखना, अपने में निश्चय बिठाना, खुद में मैं कर सकता हूं। और अगर दूसरा मुझे कह रहा है करने लिए, तो जरूर वो समझता, वो जानता है मैं कर सकता हूं। अगर मैं सामने से कह दूं मैं तो नहीं कर सकता हूं, कर सकती हूं, इसका मतलब हिम्मत भी नहीं है, और दूसरा जो मुझ में विश्वास रख रहा है वो विश्वास उसमें उसका है मेरे में पर मेरा नहीं है, तो उसका विश्वास भी खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने ना कर दिया। तभी बाबा कहते हैं ना करने वाला नास्तिक, जैसे भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक, ना किया माना नास्तिक। तो भगवान मुझे कह रहा है और वो ही मदद करेगा, जो जिम्मेदारी देता है मदद उसकी जरूर मिलती है, जिम्मेदार वही हो जाता है क्योंकि जिसने कार्य दिया है जिम्मेदार है वो, मुझे सोच समझ के दिया होगा ना, तो सोच समझ के देगा तो शक्ति भी देगा। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए, मैं हाँ ये पोस्टमैन है बाबा, इनके द्वारा कराते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि देखो मैं निमित्त हूँ, शक्ति बाबा की है, पर समझो कोई भूल हो गई और वो भूल हो भी गई, मान लो बाबा ने कुछ ऐसा कह दिया और वो सफलता नहीं मिली, तो बाबा जिम्मेदार है, वो ठीक कर देगा। इसीलिए बाबा तो निमित्त है केवल। तो ब्रह्मा की मत भी इतनी मशहूर है जितनी ईश्वरीय मत मशहूर है, भगवान वाच मशहूर है, ब्रह्मा की मत भी इतनी मशहूर है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही वो मत देते हैं। तो ये दोनों में इतना निश्चय हो, ये कौन मुझे कह रहा है, फिर मेरे अंदर हिम्मत है। बाबा स्वमान हर मुरली में देते हैं, चाहे अव्यक्त मुरली देखो चाहे साकार मुरली देखो, हर मुरली में कोई न कोई स्वमान मिलता ही है। कल का स्वमान क्या था, कौन है हम, लाइट हाउस, कितना बड़ा स्वमान है ये हर मुरली में। अव्यक्त मुरली में तो पहली लाइन में और लास्ट में याद प्यार में, ये स्वमान ही है। बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, तो हाँ क्योंकि मुझे तो इतने वो स्वमान याद रह जाते हैं, क्यों, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन करती हूँ, ऊपर बैठ करके बाबा की मुरली इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती हूँ, सभी देशों में वो ट्रांसमिशन जाता है, फिर वो अपनी भाषा में करते हैं। तो अभी इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होती है ना, वो हिंदी के बिल्कुल अपोजिट है, ऑब्जेक्ट पहले आए, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में जो वर्ब है ना क्रिया, वो लास्ट में आती है। बाबा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, अब देख रहे हैं, मिल रहे हैं, वो तो बाबा लास्ट में बताएंगे ना। अब इंग्लिश में वो पहले आता है, बाबा इज मीटिंग, बाबा इज सीइंग। अब मुझे तो क्या बोलूं, मैं सीइंग बोलूं मीटिंग बोलूं, क्योंकि वो तो बाबा लास्ट में बोलने वाले, वाक्य लंबा होता है, तो मैं नोट करती जाती हूँ, लिखती जाती हूँ, तो लिखती हूँ तो वो मेरा नशा चढ़ता है, बाबा किस किन बच्चों से मिल रहे हैं लिखते लिखते, क्योंकि मुझे वो सब ट्रांसलेट करना है, तो वो इंग्लिश में लिखती जाती हूँ ताकि वो वर्ब मिल जाए, क्रिया लास्ट वो सेंटेंस का आखिरी शब्द मिल जाए, तब मैं सारा सेंटेंस ट्रांसलेट करूँ, तो मेरा नशा चढ़ता जाता है, नशा चढ़ता जाता है, चढ़ता है आप लोगों का भी ऐसे। फिर लास्ट में अच्छा डैश 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 बच्चों को याद प्यार, तो नशा चढ़ता है, बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा जिस नजर से हम बच्चों को देख रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं, क्या हमारे अंदर भी वही नशा है, वही निश्चय है? वो निश्चय होगा, वो नशा होगा, तब निशाने पर पहुंचेंगे, वो प्राप्ति जरूर होगी। ये नहीं बस आप नशा चढ़ गया, हाँ बाबा ने तो बहुत अच्छा वरदान दिया, बहुत अच्छा दिया, फिर पूछो क्या दिया, वो भूल गया होली हंस हो तो सचमुच मैं होली हंस हूँ। होली हंस क्या करता है, हर मुरली के लास्ट में वरदान आता है, केवल रत्न चुगना, कंकड़ को फेंक देना, क्षीर नीर को अलग करना, मैं वो होली हंस हूँ, राज ऋषि हूँ, राजा ही है ऋषि भी हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मानो जो भी वरदान है ये सब मेरा स्वमान है। तो स्वयं में निश्चय, फिर ये कहने वाला कौन, इतना सर्वशक्तिवान, वो सत्यता का सागर, सत्य गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, तो सत्य जो कहेगा वो सत्य ही कहेगा, भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य है तो वो सत्य ही कहेगा ना, फिर संशय किस बात का। फिर बाबा कहते हैं कि परिवार में निश्चय, सब साथ में जाने वाले, वो लौकिक जो है वो तो सब कर्मों का हिसाब किताब है, लौकिक कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ तो संबंध भी पूरा हुआ, वो सतयुग में नहीं चलेगा संबंध, पर ये संबंध चलेगा सतयुग में, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ही संबंध बनाने हैं, समझ गए ना। कई ब्राह्मण परिवार में संबंध बना लेते, आप मेरी युगल बनना सतयुग में, बन सकेंगे क्या? यहाँ युगल बनाएंगे क्या? यहाँ बहन बनाएंगे या माँ बनाएंगे क्या? ये मेरी माँ है, कभी नहीं, ये बिल्कुल अज्ञान है। ये माँ वहाँ यहाँ कोई नहीं है, माँ है तो बस एक ही है, पिता है तो एक ही है, अलौकिक पिता और अलौकिक माँ और पारलौकिक माता पिता। यहाँ कोई ब्राह्मण सब परिवार में कोई न माँ है न पिता है, न पत्नी है न बेटा है, सब आत्मा आत्मा कौन है? भाई भाई। ये भी इतना बड़ा निश्चय हो, आत्मा आत्मा भाई भाई है। और यहाँ तो वो है कि सब रेस में दौड़ रहे हैं, ये भी नहीं है कि जो बहुत पुराने हैं वो आगे जाएंगे, जरूरी नहीं है। आज पीछे बहुत पुराने वो पीछे रह सकते हैं और नए आगे जा सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो बाबा नयों को वरदान देते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। स्टूडेंट टीचर से भी आगे जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? एक बार बीच में एक मुरली चली थी, अब एक मुरली जिसमें बाबा ने अष्ट रतन में कौन आएंगे उसकी मतलब परख दी थी, अष्ट रतन में आने वालों की। तो एक विदेशी भाई था, दादी जी के पास गया, मैं ट्रांसलेशन तो मैं ही करती थी क्योंकि उस समय तो हम ही एक थे। तो बाबा तो कहा मुझे दादी से मिलाओ, बड़ी दादी से। तो मैं ले गई तो दादी को कहता है, दादी जी आज बाबा ने अष्ट रत्नों के बारे में जो कहा, जो क्वालिफिकेशन बताई, आपके साथ ये पूरे लगते हैं। दादी आप अष्ट रत्नों में आओगी, आप सेकंड नारायण बनोगी, दादी को कहता है। तो दादी उसका मुंह देख रही है, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। कहा मैं कैसे बन सकता हूँ? आप ही बनोगी। तो दादी ने कहा ये किसने कहा मैं ही बनूंगी, बाबा ने कहा है क्या? बाबा की कोई मुरली में तो नहीं आया है कि दादी प्रकाशमणि सेकंड नारायण बनेगी, कहीं आउट हुआ है क्या? मैंने उसको कहा तो कहा नहीं, पर दादी आप में क्वालिफिकेशंस है, मैं कहती हूँ आप भी बन सकते हो। यानी दादी जी इतनी नम्र, जो ये नहीं हाँ हाँ मैं बनूंगी, उसने कहा तो आप भी बन सकते हो, आप अपने आप को कम मत देखो। तो इतना दादी जी सबको आगे बढ़ाती थी, पता है ना, विश्वास हर एक को आगे बढ़ाती थी। लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं क्योंकि अभी रेस चल रही है ना, और इस रेस में अभी तक सब दौड़ रहे हैं, पीछे वाले आगे, आगे वाले पीछे जा सकते। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, पर हाँ बनेगी जरूर। कब बनेगी? कब बनेगी? बाबा ने अभी लेटेस्ट एक मुरली में कहा, अंत में जब सबकी कर्मातीत अवस्था का समय आएगा, संपूर्ण बनने का समय आएगा, वो बनी माना विनाश हुआ। अभी नहीं बन सकती ब्राह्मणों की माला, पर जैसे अंत में बनी वही रुद्र माला बनेगी, वही फिर वैजयंती माला बनेगी, बाबा बताते हैं। तो इसीलिए इतना निश्चय परिवार में भी हो, हर एक को सम्मान दो, ये परिवार की निशानी है, हर एक को सम्मान दो। सम्मान हम कहते हैं, अगर सम्मान नहीं दे सकते हो तो कम से कम सहन तो करो, ये भी विशेष आत्मा है, सहन करो। सहन नहीं कर सकते हो तो चलो उनसे भी कम उनको स्वीकार तो करो, भाई है ये भी ब्राह्मण आत्मा है। सम्मान नहीं दे सकते, चलो अपने आप को थोड़ा ईगो है, अभिमान है, इसलिए सम्मान नहीं दे सकते, तो उनको सहन तो करो। सहन शक्ति तो बाबा ने दी है, सहन भी थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि अभिमान टूटना बड़ा मुश्किल है, तो स्वीकार तो करो कि ये भी ब्राह्मण आत्मा है, इसने भी भगवान को पहचाना है। इसलिए बाबा ने माताओं को कितना आगे किया, भले दुनिया की कोई कला न हो लेकिन भगवान को पहचाना है, ये तो कला है। जो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले, उनको भी भगवान की पहचान नहीं है, पर इन बूढ़ी माताओं को, अनपढ़ माताओं को भगवान की पहचान है। शिव बाबा तो कहती है, तो ज्यादा कौन हो गए ऊंचे, कौन हो गए ऊंचे। वही तो, इसलिए बाबा कहते हैं कि ये परिवार के प्रति विश्वास। और फिर चौथा है ड्रामा। ड्रामा पर इतना अटल अडोल रहना है, पर ड्रामा को पॉजिटिव वे में लेना है। अगर नेगेटिव वे में ड्रामा लेंगे तो अपने आप को ही नुकसान करेंगे। जैसे चाकू को कैसे पकड़ना होता है चीज को काटने के लिए, अगर चाकू का जो शार्प साइड है वो अपने तरफ किया तो क्या होगा, आपका ही हाथ कट जाएगा, वो चीज तो नहीं कटेगी। क्योंकि पकड़ा उल्टा तो चाकू को क्या दोष दे रहे हैं आप, पकड़ना ही नहीं आया। तो ड्रामा को कैसे हमें हैंडल करना है, जब बात हो जाए उसके पहले नहीं। होनी तो वही है जो कल पहले हुई थी, कोई नई बात तो होनी नहीं है, पर वो बात होने के बाद ही ड्रामा याद रहे। ये नहीं जो ड्रामा में होगा वो होगा ना, ठीक है हम पुरुषार्थ क्यों करें। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण हम देते, जैसे एक इमरजेंसी गेट, हवाई जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, सब में एक इमरजेंसी दरवाजा होता है या खिड़की होती है, होती है कि नहीं होती है। वो ऐसे कोई खोल नहीं सकता है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है, दरवाजा भी नहीं खोल सकता है। अगर खोला तो जुर्माना लगता है, बहुत कड़ा, जेल भी मिल सकती है। क्योंकि वो खोलना ही तब है जब कोई दुर्घटना हो, नहीं तो नहीं खोलना, हाथ भी नहीं लगाना। हम कहीं एक विदेश में गए थे, स्वीडन या डेनमार्क, यूरोप का कोई देश, वहां तो हर मकान में इमरजेंसी दरवाजा, हर जैसे विदेशों में तो है ये फायर एग्जिट है वो नॉर्मल एग्जिट नहीं है, फायर लिफ्ट है वो नॉर्मल लिफ्ट नहीं है, यानी उसमें ऐसे नहीं जा सकते। जब कोई इमरजेंसी हो तभी वो दरवाजा भी खोलना या लिफ्ट में भी जाना है या सीढ़ियां भी उतरनी है, आग लगे कहीं कुछ हो तभी उसके लिए। तो हम एक स्वीडन में गए थे, डेनमार्क नॉर्थ यूरोप में, तो वहां मकान है तो हर मकान में एक इमरजेंसी दरवाजा है, और वो दरवाजा बिल्कुल मेन रोड तक जा, खोलो और मेन रोड पर पहुंच जाओ, नहीं तो इतना लंबा दूर से वो चल करके फिर आओ। तो हमने एक बार वो खोल दिया, खोला, ओ बिचारी वो बहन इतना डर गई, प्लीज ये दरवाजा मत खोलो। मैंने कहा अरे ये तो बिल्कुल गेट दरवाजा मेन पर रोड पर जाता है, बिल्कुल नहीं, पुलिस आ गई तो कितना जुर्माना लगेगा हमारे पर, ये दरवाजा खोलना ही नहीं है, ये बंद ही रखना है। तब मुझे समझ में आया कि ये क्यों बंद रखना, नहीं तो वो इसीलिए वो दरवाजा कर खोल रखते हैं ताकि कोई ऐसी बात हो जाए तो वो गेट से तुरंत रोड पर आ जाओ, पर वो खोलना ही नहीं है, वो भले लंबा रास्ता करके जाओ पर वो दरवाजा नहीं खोलना है। तो ड्रामा क्या है हमारा, ये इमरजेंसी एग्जिट है। जैसे कोई आपके पेट में दर्द हो रहा है तो कहेंगे क्या, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके देखो पेट में क्या हो रहा है, हर वक्त ऑपरेशन करते रहेंगे क्या, क्या करेंगे? डॉक्टर भी इतना बेवकूफ नहीं होगा जो ऑपरेशन करेगा, वो खोल देगा सारा पेट आपका कहेगा पहले ये एक्सरे कराओ, पहले वो क्या सोनोग्राफी कराओ, पहले ये ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट 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 करके तो उसे पता तो चले, ऐसे ही थोड़ी पेट दर्द हुआ मना ऑपरेशन। जब और कोई रास्ता नहीं तो लास्ट में है ऑपरेशन, ऑपरेशन तब तक नहीं। तो ड्रामा क्या है, ये ऑपरेशन है उस दुख से हटने के लिए, कोई ऐसे क्यों हुआ, इसे नहीं होना चाहिए था, इसको इसने किया ऐसे किया इसलिए ऐसे हुआ, ये होता नहीं होता तो ये नहीं होता, बाबा कहते सारा विस्तार है। और इसका बिंदु क्या है, क्या है बिंदु, ड्रामा बिंदु, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा, इसमें भी कोई कल्याण होगा। और बुद्धि को फुल स्टॉप लगा दिया, ये है ड्रामा का ज्ञान, ये है ड्रामा में निश्चय। तो हाँ? क्या कहते, हाँ, बाबा ने इतनी सुंदर बात अनपढ़ माताओं के लिए कह दी है, आपने भगवान को पहचान लिया, और क्या आपको चाहिए। चाहे वो विद्वान पंडित भी पीछे रह गए, याद नहीं ठहरती। हाँ बोले बाबा बाबा कहते रहो, कोई बात नहीं, ये भी बहुत शक्ति देगा, अंत में यही काम आना है, और तो कुछ काम नहीं आना है। कई ऐसे अनुभव है ना कईयों के, बताए कैसे बस बाबा बाबा का शरीर छोड़ दिया। आप बताओ, उसका ही गायन होता है, जो तड़प तड़प का शरीर छोड़ा उसका गायन होगा क्या, किसका गायन होता है? तो जी जी, हाँ कितनी अच्छी बात कही। बस ये चार प्रकार का निश्चय रखो तो इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे, माया हिलाने पर भी कभी हिला नहीं सकेगी। ठीक है, ओम शांति। आप
दीदी का शुक्रिया कैसे किया जाए।
हम तो कहते एक हाथ की ताली, आवाज में भी नहीं आओ, बस एक हाथ की ताली बहुत है, बाबा भी यही सिखाते।
यूं तो सरस्वती का शुक्रिया कभी हो नहीं सकता ना पूर्ण, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आगे भी दीदी एक बार जरूर बीच में आए, हमारे बीच में।